बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबको खुश आमदीद जी टू दिस सेशन। हम वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल। हमने जो चीजें पिछले सेशन में की थी, मैं सिर्फ एक दफा उनको रीकैप कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि वो आपके सामने ताजा हो जाएं। मैंने इसमें सबसे पहली बात भी गुजारिश की थी कि इसकी नीड क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल। मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि हमारे जो एक्शंस हैं, जब तक कि हम इसमें अपनी तरबियत ना करें, हम अक्सर औकात दे आवर एक्शंस विद दे एमिनेट फ्रॉम सच इंटरनल प्रोसेसेस जिनसे हम बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं होते हैं। और जब हम व्हेन वी एक्ट विदाउट द अवेयरनेस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस, वी टेंड टू बिकम रिएक्टिव एंड आर मोर लाइकली टू रिग्रेट आवर एक्शंस लेटर। अवेयरनेस जो है हमारी इंटरनल प्रोसेसेस की, वो हमें एनेबल करती है कि हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस को रेगुलेट कर सकें। ये उसकी रिक्वायरमेंट है, अपने इंटरनल प्रोसेसेस को रेगुलेट कर सकना इसकी रिक्वायरमेंट है। ये इसका प्री रिक्विजिट ये है कि हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस से अवेयर हों। मिसाल के तौर पर, आप अगर इस वक्त स्ट्रेस में हैं और आप यू आर नॉट फुली अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि मैं स्ट्रेस में हूं, तो उसके नतीजे में आप इसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। हम दो में से किसी एक चीज को कम से कम रेगुलेट कर सकते हैं, अपने एक्शंस को और अपनी इमोशंस को। दोनों ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कर पाए, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग कि हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर सकें। अलबत्ता एक्शंस को हम रेगुलेट कर सकते हैं। इवन अगर महज हमें ये पता चल जाए कि हम अपनी अवेयरनेस पैदा कर लें कि हम अपने इस वक्त हमारी फीलिंग क्या है, हमारी थॉट्स क्या है, किस वजह से हमारी ये फीलिंग हो रही है। और मैंने ये अर्ज किया था कि जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है, ये मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, ऑल दोज हु आर इन दिस सेशन, ऑल दोज हु लिसन टू दिस सेशन लेटर ऑन, इसकी रिकॉर्डिंग देखें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको करके देख लीजिए। डोंट गो बाय माई वर्ड। मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स। आई कंसिडर इट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर डिवेलपिंग अवेयरनेस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस, जिसके नतीजे में हम वो रेगुलेट कर सकेंगे। हम अगर ये रेगुलेशन अब इस अवेयरनेस में नहीं आएंगे, तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको रेगुलेट कर सकें। और अगर आप ये समझते हैं, इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि इंसान के एक्शंस जो होते हैं, इंसान जो कुछ कर रहा होता है, वो किसी ना किसी इंटरनल प्रोसेसेस से रिलेट करता है। आप जब कुछ करते हैं तो या तो आपका कोई पॉजिटिव इंटरनल प्रोसेस होगा या नेगेटिव होगा। बहरहाल जो कुछ भी आपके अंदर, जो कुछ भी आप अमल करते हैं, योर एक्शंस दे आर नॉट मेयरली लाइक विंड ब्लोइंग। ऐसा नहीं है कि आप एक कागज हैं जिसको हवा इधर से उधर बकेर रही है या थपेड़े मार रही है। जो इंसान के एक्शन हैं, जो कॉन्शियसली वो करता है, उसमें उसके इंटरनल प्रोसेसेस डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और इनको रेगुलेट करना ये रिफ्लेक्टिव जर्नल के जरिए से आसान हो जाता है जी। दूसरी चीज मैंने इसमें जो आपके सामने प्रेजेंट की थी लास्ट टाइम, वो सिंपली एक जो हमने इससे पिछला टॉपिक किया था अबाउट कॉन्वर्सेशंस, उसका एक स्लाइड उसकी ली थी, सो दैट वी कैन सी कि किस तरह से एवरी एक्शन दैट इज रिकमेंडेड, यहाँ पर इस सफ़े पे जो 5 एक्शंस रिकमेंड किए जा रहे हैं, उसके पीछे हमारे इंटरनल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो इन्वॉल्व हैं, तो फिर हम उनसे अवेयर होंगे तो इन एक्शंस को पूरा कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। और इसी सिलसिले में मैं आज आपको जो दूसरा इसका हिस्सा है, उसमें आगे हम बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा असल मकसद ये होगा कि वो अब जिस चीज की हम बात कर रहे हैं अबाउट रिफ्लेक्टिव जर्नल को मेंटेन करने की, उस रिफ्लेक्टिव जर्नल के क्या हिस्से होंगे, आपने उसको कैसे बनाना है। आप इससे मेरी जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको ट्राई करके देखिए, एंड यू विल सी। इसकी एक वजह है, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको बयान कर दूंगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है कि जिस वक्त हम ये रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाएंगे, तो उससे हम ज्यादा कॉन्शियस होते चले जाएंगे अपने एक्शंस के बारे में, अपनी थॉट्स के बारे में। आमतौर पर हम अपनी इमोशंस को और अपनी थॉट्स को ऐसे समझते हैं कि जैसे ये तो बस है, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड कि वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम, बट एज वी स्टार्ट वर्किंग ऑन देम एंड स्पेशली दिस टूल ऑफ मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल, आप ये देखेंगे कि ये आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे, आप अवेयर होना शुरू हो जाएंगे उसके बारे में। हाँ, मेरे से आगे चल रहे हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। आज जो हम जिधर से बात शुरू कर रहे हैं वो ये है कि बिकमिंग मोर कॉन्शियस ऑफ आवर प्रोसेसेस एंड एक्शंस। हमने जर्नलिंग करनी है ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। इसमें मैं गुजारिश ये करूंगा आपसे, सबसे पहली बात ये कि अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी जाती इम्प्रूवमेंट के लिए, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, नॉट टू इम्प्रेस एनीवन, नॉट टू टॉक टू एनीवन अबाउट इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई इम्प्रूवमेंट, मैं गुजारिश ही करूंगा कि आपको 15 से 20 मिनट, 25 मिनट एवरी इवनिंग यू हैव टू टेक देम आउट फॉर योर सेल्फ। इसमें आपने करना ये है और इस अपने दिन का रिव्यू करना है कि ये जो पूरा दिन गुजरा है इसमें क्या क्या वाकयात पेश आए हैं। कोशिश करनी है आपने कि इसमें से दो एंट्रियां निकल आए। एक एंट्री वो होगी कि जिसमें आपने कॉन्शियसली, द फर्स्ट एंट्री विल बी अबाउट टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन वी सक्सीडेड इन फॉलोइंग एनी वन और मोर ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ कॉन्वर्सेशन। अभी हम सिर्फ इन गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं जिसको हम कर चुके हैं, वरना जैसे जैसे ये वर्कशॉप आगे बढ़ेगी तो आप ये देखेंगे कि इन एट एवरी स्टेप, हर स्टेप पर ये जो आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल है ये आपको अपने प्रिंसिपल्स के साथ रिलेट करेगा, अपने प्रिंसिपल्स से उनके बारे में कॉन्शियस करेगा और एक प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ गुजारने में मदद करेगा। पहली चीज आज के हवाले से, वरना इसको आप एक जनरल चीज भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरह पढ़ें कि द फर्स्ट एंट्री विल बी अबाउट अ टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन वी सक्सीडेड इन फॉलोइंग वन एनी एनी वन और मोर ऑफ आवर सिलेक्टेड प्रिंसिपल्स। आज हम सिर्फ इसके हवाले से बात कर रहे हैं, गाइडलाइंस ऑफ कॉन्वर्सेशन। जो अभी हमने कंप्लीट किया है टॉपिक, उसमें से आपको पहले हिस्से की भी, दूसरे हिस्से की भी गाइडलाइंस आपके सामने है। इसको अपने सामने प्रिंट करवा लें, इसको अपने सामने दीवार पे रख लें, सो दैट यू रिमेम्बर कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपने करना ये है कि अपनी शाम के टाइम पे 15 से 20 मिनट निकाल के गौर करें कि किस कॉन्वर्सेशन में आप इनमें से किसी गाइडलाइन को अच्छी तरह फॉलो कर पाए। दूसरी एंट्री आपने ये करनी है कि विल बी अबाउट अ टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन वी वर नॉट एबल टू एडहेयर टू एनी वन और मोर ऑफ द गाइडलाइंस, जब हम इसमें नाकाम हुए। इन ईच एंट्री, ये जरूरी है जी, ये आपके लिए रिकॉर्ड है और ये कोशिश कीजिए कि आप अपने तक ही रखिए। इट इज अ वेरी ह्यूज यू नो टूल फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट इफ यूज प्रॉपरली। आपने किसी लगी लिपटी के बगैर, जो जो लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें बिला तकल्लुफ, किसी को इम्प्रेस नहीं करना, किसी उसके अंदर ग्रामेटिकल रूल्स का ख्याल नहीं रखना उन स्टेटमेंट में जो आप लिखेंगे, आपने सिर्फ इसलिए रखना है ताकि ये आपकी एक याददाश्त बने। In each entry, we will write the date, कि कब की बात है, what happened very briefly, कि ये हुआ था, situation क्या थी, ताकि आपको context याद आ जाए जब आप बाद में देखें। What was the guideline in question that we honored or ignored? हमने जो guidelines देखी हैं पीछे दोनों हिस्सों में conversations के, आप ये देखिए कि which particular guideline are you talking about in your example? What were we thinking and feeling? आपकी उस वक्त सोच क्या थी, आपके अंदर इमोशंस क्या थी? What led us to think and feel the way we did? किस वजह से ये सोच थी या किस वजह से आपकी ये फीलिंग थी? What did we do and how did we feel about it? ये जितनी भी चीजें हैं इनको अगर आप कर लें, शुरू में आपको इनको रिफर बैक करना पड़ेगा, बट एज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम What you will see is कि ये naturally आपकी उसका हिस्सा बन जाएगा। इंसान इस तरह की चीजें जो हैं ये महज रेपिटेशन से बड़े आराम से सीख लेता है। इसके बाद एक आखिरी चीज ये है कि इन केस ऑफ द सेकेंड एंट्री, जिधर आपने ये बताना है कि आप जिधर नाकामी का सामना करना पड़ा, मिस कर गए किसी एक गाइडलाइन को फॉलो करने में, सेकेंड एंट्री की सूरत में ऑल्सो राइट वॉट कैन वी डू डिफरेंटली इन फ्यूचर दैट माइट हेल्प अस इन अबाइडिंग बाय द गाइडलाइंस मोर इफेक्टिवली। आइंदा के लिए आपने इमेजिन करना है, अपनी इमेजिनेशन को जरा थोड़ा सा एक्टिवेट करना है कि क्या कर सकते हैं आप कि इस तरह की सिचुएशन में ये वाला एस्पेक्ट ना पैदा हो कि आपको गाइडलाइन इग्नोर करनी पड़े। ये जो सारे के सारे हैं, इनको मैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, इंशाल्लाह इफ यू सेंड मी एन ईमेल, आई कैन सेंड यू द टेक्स्ट ऑफ दीज फाइल्स, आपके लिए ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। और इसको प्रैक्टिस करना है जी, ये जो आपने अभी सीखा है, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको मैंने जिस तरह से शुरू में बताया था, लर्निंग जर्नल अगर आप बना सकते हैं, देखिए इसमें क्या चीजें हैं जो ये पिछले 2 सेशन में आपने सीखी हैं, क्या चीज है जो कि आप नहीं जानते थे आज पता चली है। इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड देन दैट इज वेयर एक्चुअल लर्निंग अकर्स। दूसरी चीज ये कि इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना जी इस तरह के, इसमें एक प्रॉब्लम है, यानी हमें इल्म हासिल हो गया और हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो असल में वो ऐसे ही जैसे नहीं हासिल हुआ। इट विल हैव नो इफेक्ट, महज जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये करेंगे तो फर्क पड़ेगा और ये फर्क आप खुद महसूस करेंगे कि पढ़ा है। मैं इसलिए इस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ जी कि जब भी ये कभी हुआ है, जब भी हमने रिकमेंड किया है इसको, और हमेशा ही करते हैं, और जब भी किसी ने ये फॉलो किया और उसका जो फीडबैक मिला है दैट हैज ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव, तो मेरी गुजारिश ये है कि इसको जरूर कीजिए। मैं इसकी आई वुड लाइक टू शेयर विद यू 2 मिसालें। मैं जिस तरह से मैंने कहा कि 2 एंट्रीज करनी है, तो मैं ये 2 ही मिसालें आपके सामने लेके आ रहा हूँ, सो दैट आपके लिए एक और भी उसकी एग्जाम्पल सामने आ जाएगी कि किस तरह से इसको जर्नल एंट्रीज को बनाना है। देखिए आपने डेट लिखी, उसके बाद इसका कॉन्टेक्स्ट लिखा। मैंने ये लिखा है कि इन अ कॉन्वर्सेशन विद माई स्पाउस टूडे व्हेन आई इन्फॉर्म्ड हर अबाउट द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं इसका इसका ब्रीफली तर्जुमा भी करता जाऊंगा, और इसको ध्यान में रखना है कि आपने किसी लैंग्वेज के बैरियर को नहीं प्रॉब्लम बनने देना। अगर कोई बात समझने में मुश्किल हो तो आपने इसको बिला झिझक पूछना है। When I informed her about the increase in the electricity bill, she immediately replied that she was being as careful as she could and that she did not think there was anything she could do about it. जब मैंने उनको ये बताया, अपनी अहलिया को ये बताता हूँ मैं कि बिल ज्यादा हुआ है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स ये आता है कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, वी आर ऑलरेडी वेरी केयरफुल। इसके नतीजे में जो पहला ख्याल मेरे अंदर आया, अब ये मेरी जर्नल एंट्री है जी, जो पहला ख्याल मेरे अंदर आता है वो ये है कि वाई आर यू, ये कहूं मैं कि वाई आर यू बींग सो डिफेंसिव। लेकिन ये जो जुमला है, ये जो सेंटेंस है, ये असल में एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। ये पूछ नहीं रहा है कि इतना डिफेंसिव क्यों है, ये बेसिकली कमेंट कर रहा है दूसरे के ऊपर कि तुम असल में महज डिफेंसिव हो रही हो या हो रहे हो। हाउएवर फॉर्चुनेटली आई रियलाइज इन टाइम दैट आई वॉज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बाई हर रिप्लाई एंड वॉज थिंकिंग, और मैं सोच ये रहा था, मैं उसकी रिप्लाई पर फ्रस्ट्रेट फील किया और मैं ये सोच रहा था कि शी इज नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग विच इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव थॉट। आई ऑल्सो रियलाइज इन टाइम दैट माई स्टेटमेंट हैड कॉज्ड हर टू फील ब्लेम्ड, मेरी ये स्टेटमेंट से उनको ये मतलब मिला है कि एज इफ मैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। So I checked my response and I said, I didn't intend to blame you. I apologize if that is how I sounded. I only wanted to say that we need to try to find a solution to this problem together. We cannot increase our income immediately. So what do you think we should do about it? Zahir hai, ye ab hamari problem hai. We are partners. We are running this household. I was very pleased because I felt that my timely realization of my negative thoughts and feelings helped me avoid an unnecessary argument from starting. ये देखिए, ये है जो आपकी जर्नल एंट्री है। आप इसको अपने लिहाज से जब सोचेंगे कि आज जो कुछ हुआ उसमें where you controlled yourself, जिधर आप realize कर गया कि अगर मैंने ये बात की तो इससे क्या नतायज निकल सकते हैं, when you kept the consequences in your mind, तो उसके नतीजे में आपको ये अच्छी मिसालें मिल जाएंगी एंड पुटिंग देम डाउन ऑन पेपर विल एक्चुअली मेक यू लिव देम अगेन। ठीक है जी, और मकसद असल में ये है कि हम अच्छी हैबिट्स को ज्यादा मजबूत करें, ज्यादा स्ट्रेंथन करें अपने अंदर। दूसरी एंट्री की मिसाल भी मैं आपके सामने रख रहा हूं जी, एक दिस इज जस्ट फॉर योर हेल्प। डेट लगाई, उसके बाद टुडे व्हाइल आई वाज टोटली इन्वॉल्व्ड इन वाचिंग अ टेनिस मैच एंड व्हाइल द मैच वाज इन अ टेंस सिचुएशन आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय सन। व्हेन आई सॉ हिज नंबर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द फोन आई फेल्ट इरिटेटेड एट बीइंग डिस्टर्ब्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है जी, आप अगर कभी किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो और पूरी तरह से एंग्रॉस्ड हो और उस वक्त आपको फोन आ जाए तो आपके अंदर एक इरिटेशन की फीलिंग डेवलप हो सकती है। आई फेल्ट इरिटेटेड एट बीइंग डिस्टर्ब्ड एट दिस टेंस मोमेंट। हाउएवर आई आंसर्ड द फोन। व्हेन माय सन टोल्ड मी दैट टुमारो वाज द लास्ट डे टू डिपॉजिट हिज कॉलेज फी आई रिटॉर्टेड विद फ्रस्ट्रेशन दैट ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर एंड दैट ही इज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन हु कीप्स वेस्टिंग हिज टाइम। वो जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स है वो भी रिटॉर्ट बन गया और उसके नतीजे में ये बात निकल गई। ऑल्दो ही ट्राइड टू टेल मी दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट एंड दैट द कॉलेज हैड इन्फॉर्म्ड हिम अ फ्यू मिनट्स अगो आई रिफ्यूज टू लिसन टू हिम एंड हंग अप द फोन। सम टाइम लेटर, आमतौर पर ये होता है जब हम रिएक्शन करते हैं कि कुछ देर के बाद ये रियलाइजेशन पैदा होती है दैट आई वॉज वेरी रूड इन माई रिस्पॉन्स एंड सो आई कॉल्ड हिम टू अपोलोजाइज फॉर इट। इन रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आई रियलाइज आई हैड इग्नोर्ड द गाइडलाइन ऑफ बींग अवेयर ऑफ एंड ऑनरिंग माई इमोशनल स्टेट। आई थिंक दैट विद माई करंट इमोशनल स्टेट ऑफ बींग टेंसली एंगेज इन द मैच आई शुड हैव टोल्ड माई सन दैट आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड एंड वी शुड टॉक लेटर। Doing so would have saved me from responding rudely and from calling back to apologize for my mistake. ये एक negative entry है जी। Negative का मतलब ये है कि जिधर I could not keep the guidelines in my mind और मैं miss कर गया। ये वो guideline है अगर आपको याद हो कि जिसमें ये बड़े stress के साथ ये कहा गया कि अपनी emotions से aware होना चाहिए। आप एक गुफ्तगू शुरू करने लगे हैं और आप एक tense situation में हैं। You are feeling tensed, you are feeling stressed, you are feeling totally involved in something. तो उसके नतीजे में जो distractions होंगी वो आपको थोड़ा सा irritate कर सकती हैं। ये वो मौके होते हैं कि जिस वक्त अगर कोई फोन आपको जवाब देना पड़े भी तो आपको ये कह देना चाहिए कि जी मैं इस वक्त बहुत किसी चीज में बहुत इन्वॉल्व हूँ, अगर आप थोड़ा सा टाइम दें तो आई विल कॉल यू बैक एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। ये कोई रूडनेस नहीं है, ठीक है जी। वी कैन गेट इन्वॉल्व, वी कैन बी एंगेज। ये जो चीजें हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, ये असर क्यों डालती हैं? यानी व्हाई डू आई से, व्हाई डू आई थिंक कि ये चीज जो है अगर आप ऑनेस्टली ये एंट्रियां करेंगे तो आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा, ये समझना भी बड़ा जरूरी है जी। इंसान जब ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलती हो गई है और उसका सोल्यूशन सोचता है, ये देखिए यहां पर एक सोच आ रही है। आप असल में सिर्फ ये नहीं सोचते कि ये एक्शन यूं होता, बल्कि आप एक पूरा सीन क्रिएट करते हैं। ये जो इमेजिनेशन है आपकी, ये असल में हमारे दिमाग की रियलिटी बननी शुरू हो जाती है अगर हम इसको कॉन्टिन्यूअसली इमेजिन करते जाएं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग अब रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता जी। व्हेन व्हेन वी इमेजिन समथिंग इट एक्चुअली बिकम्स रियल फॉर आवर ब्रेन, और वो ऐसे ही होता है जैसे दिमाग ने उसको एक्सपीरियंस किया जी। उसके फिजिकल इमोशनल इम्पैक्ट होते हैं कुछ, और ये वो चीज है जिसकी तरफ ये जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है ये हेल्प करता है कि हमें वो इमेजिन करने पे मदद करता है कि हम जो अच्छे रवैये हैं उनको इमेजिन करें कि हाउ कैन वी बी मोर स्ट्रेंथन्ड इन दोज एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सेज, और किस तरह से जो वो चीजें कि जो गलत है उनसे अपने आप को निकाल सकते हैं। ये रिफ्लेक्टिव जर्नल है जी। मैं ये चाहूंगा कि आप मेरी मेरी बात मानकर कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए इसको ट्राई करें एंड यू विल फील सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन दैट, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अपने आप में, अपने आप में अवेयरनेस के बारे में, अपनी इमोशनल और थॉट रेगुलेशन के बारे में। यू विल फील मच बेटर इंशाल्लाह। Thank you, Ji. Inshallah, I'm now available for the questions that you might have about these slides. और अगर इस पे कोई चीज क्लेरिफिकेशन की हो तो वो पूछ लीजिए, वरना इसके बारे में अगर कोई भी सवाल करना चाहेगी. थैंक यू वेरी मच जी.
अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब, क्या हाल है आपका?
अलहमदुल्ला जी, मैं ठीक, शुक्र अल्लाह.
मोहित साहब, आपने जो भी समझाया इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट ये मुझे बताएं कि ये तो आप अपने लिए लिख रहे हैं, अगर आप एक कॉन्वर्सेशन में यू फाइंड द अदर पर्सन इज डूइंग एग्जैक्टली द रॉन्ग थिंग व्हिच यू हैव स्टेटेड फॉर योरसेल्फ, तो फिर वो तो नहीं जर्नल लिख रहा, तो उसको किस तरीके से आप समझा सकते हैं कि प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन हाउ यू स्पोक, प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू डिड एंड मे बी राइट डाउन द सेम वे, बिकॉज समटाइम्स पीपल डोंट, दे थिंक व्हाट दे हैव सेड व्हाट दे हैव डन इज राइट, तो डजंट दिस वोंट दिस बिकम अ प्रॉब्लम? अपने आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं बट जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसकी वो कैसे इम्प्रूव करेगा?
वो जब तक खुद चाहेगा नहीं जी, आप उसको इम्प्रूव नहीं करा सकते. एक प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं, बेशक चाहे, और ये चाहत हमारी कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, कि हम किसी की हेल्प करें या किसी को समझाएं कि वो अपने रवैये को बेहतर करे. अनफॉर्चुनेटली इसकी कुछ लिमिट्स हैं, और सबसे बड़ी लिमिट ये है कि हम बात बता सकते हैं. देखिए, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये मैंने आपके साथ एक पूरा एक आइडिया शेयर किया है अबाउट राइटिंग डाउन अ रिफ्लेक्टिव जर्नल, मैं ये शेयर ही कर सकता हूँ, किसी को लिखवा नहीं सकता. ठीक है जी, कितने लोग लिखेंगे, कितने नहीं लिखेंगे, कितने लोग इसको समझते हैं कि इसकी ये काम करेगा, कितने लोग समझते हैं कि नहीं करेगा. वो समझते हैं कि काम करेगा, लेकिन अभी अभी है टाइम, इसको ले लेंगे, देर आर मेनी मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. तो ये सब कुछ जो है, ये दिस इज योर थॉट प्रोसेस, और आपने इसके मुताबिक अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने हैं. लाइकवाइज, जिनके साथ आप कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, वो दे आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड सिचुएशंस. इसमें हम बहुत ज्यादा उनकी उनको फोर्स नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना करने की कोशिश करनी चाहिए. जो पूरे का पूरा ये प्रोग्राम है, इसका टारगेट मैं हूँ. ठीक है जी, मैं इस दुनिया में जब जीता हूँ, मैं इस दुनिया में जब इंटरेक्ट करता हूँ, मैं जब काम कर रहा हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके नतीजे में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. मैं कभी गुस्से में आ जाता हूँ, मेरी थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, ये सब कुछ होता है मेरे साथ. ये जो प्रोग्राम है वो ये नहीं बता रहा कि आप दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं. ये प्रोग्राम सिर्फ ये बता रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि इस दुनिया की जो जिंदगी की मुझे मोहलत मिली हुई है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे हासिल करने की जिद्दोजहद करनी है, वो ये कि अपने आप को सही करके इस दुनिया से रुखसत होने का टाइम जब आए, तो मैं अपने आप को सही कर चुका हूँ, या कम अज कम मेरी डायरेक्शन ठीक हो. आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. अच्छा, ये एक बात, तो इसको तो बड़ी अच्छी तरह से हमको समझ लेना चाहिए. अब आइए दूसरी तरफ, यानी एज मच एज आई इम्प्रूव माई सेल्फ, ऑटोमेटिकली मेरी जिंदगी का, मेरी जात का इन्फ्लुएंस अपने अपनी सराउंडिंग्स में ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा. वो उसकी पॉजिटिविटी जो है, वो जिस जिसको अल्लाह ताला तौफीक देगा, वो उससे ले सकता है, फायदा उठा सकता है, और जिसको अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक नहीं मिलनी, वो फिर भी फायदा नहीं उठाएगा. लेकिन बहरहाल मेरी जिम्मेदारी जो है, एज मच एज आई नो, एज मच एज आई अंडरस्टैंड, वो सिर्फ अपने आप को ठीक करना है, अपने इन्फ्लुएंस को बेहतर करना है. अपने आप को ठीक करूंगा मैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा इन्फ्लुएंस बेहतर होना शुरू हो जाएगा. दिस इज वॉट आई नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज वॉट आई नीड टू रियली फोकस ऑन. आप की बात जो है, मैं इसमें एक और चीज भी चाहूंगा कि अर्ज कर दूं कि जितना आपकी सिचुएशन आपको टेस्ट करेगी, जितना ज्यादा आपको टेस्ट करेगी और आपको ये बताएगी कि यहाँ पर फिर मुश्किल हो गई है, यहाँ पर फिर मैं फेल हो रहा हूँ, यहाँ पर फिर मेरे मेरे लिए अंदर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस पैदा हो रही है इन रूल्स को फॉलो करने में, तो ये याद रखिए कि ये जो एनवायरमेंट है, ये आपको सपोर्ट कर रही है आपके पोटेंशियल को, अच्छाई के पोटेंशियल को उजागर करने में. सो टेक दैट एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर योर सेल्फ, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम ये जो अपॉर्चुनिटीज ही सेंड्स आवर वे, इससे हम अच्छी तरह से फायदा उठा सकें इंशाल्लाह.
बट वही सब, कैन यू एटलीस्ट सजेस्ट कि प्लीज आप जरा सा रिफ्लेक्ट करें हुएवर यू टॉकिंग टू कि व्हाट यू सेड व्हाट यू डिड वाज अ पेनफुल थिंग, आप जरा सोच लें कि वाज दिस अ गुड आइडिया, जैसे आप कह रहे हैं उसको भी जरा सा सजेशन तो आप दे सकते हैं कि
दे
आप
सकते हैं.
राइट डाउन कर लें कि अच्छी बात नहीं है इस तरीके से कहना, एंड देन Leave it. I know this is for myself, but I was
I
wondering
think
if you can make.
I totally agree with you. You can suggest, and that would obviously depend on your relationship with the other person. अगर आप ये समझते हैं कि हमारा रिलेशनशिप इतने ट्रस्ट पर मबनी है कि हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए. ये उसकी खैरखाही के लिए कीजिए, इसलिए नहीं कि आपके लिए आसानी हो, इसलिए कि वो एक बेहतर इंसान बन सके. ये स्पिरिट है, जरूर करें. अच्छा रिलेशनशिप है, जरूर करें. अगर अच्छे रिलेशनशिप में दरार पड़ी हुई है तो फिर पहले ट्रस्ट बिल्ड करें, वरना आपकी सजेशन का फायदा कोई नहीं होगा.
मैं सिर्फ बच्चों का, दोस्तों का, स्पाउस का जनरल सोच रही हूँ, इवन फ्रेंड्स को, कि भाई जरा सोच लो ये आज क्या बात हुई है, ये
जरूर
मैं
करें,
समझ
जरूर करें.
जी.
देखिए, ये अगेन बच्चे हो, दोस्त हो, स्पाउस हो, फ्रेंड्स हो, जो भी है, अगर मेरा रिलेशनशिप ट्रस्ट पर मबनी है तो मैं उनको, यानी ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट का मतलब ये है दैट दे नो मी, दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिफेंसिव, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई एम बींग वेल विशर. अगर ये बात है एंड दे विल टेक यू पॉजिटिवली, जब ट्रस्ट होगा तो आपकी बात को पॉजिटिवली लिया भी जाएगा. तो ये सिचुएशन है जरूर कीजिए, और ये सिचुएशन नहीं है तो फिर इस पे वर्किंग करने की जरूरत है कि हमारा रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाए.
शुक्रिया, बहुत बहुत
मोस्ट वेलकम
थैंक यू
जी.
जी. बहुत शुक्रिया सर. मैंने ये पूछना था कि मैं इस मामले में बहुत कमजोर हूँ, कि ये जो इरिटेशन और गुस्सा मुझे अपने से कमजोर लोगों पे ज्यादा आ जाता है, जैसे बच्चों पे या मुलाजम पे, ये मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता. मैं जब से क्लास ले रही हूँ काफी देर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस मामले में कुछ बेहतर हो जाऊं, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पा रहा. इसके बारे में मैं क्या करूं?
और मेहनत करें. देखिए, ये जो है ना बात कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा, इसको कभी डिस्करेज ना, इससे कभी यानी डिसहार्टेंड ना फील करें. आप नहीं कर पा रही, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें आइडियल बनाकर उनकी जद्दोजहद करनी है और उसमें हौसला नहीं हारना है. यही हमारी जिंदगी का टेस्ट है जी. यानी जो चीज ज्यादा मुश्किल फील हो रही है आपको, आप उसमें छोटी मिसालों से शुरू कर लें. कि देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ. आपने बड़ी अच्छी और बड़ी ऑनेस्ट बात फरमाई है, एंड आई रियली रियली कमेंड यू फॉर दैट, कि अपने से कमजोर लोगों पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है. इसलिए क्योंकि अपने से हायर अप्स के लिए या अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोगों के लिए हमारा फायदा इसमें होता है कि अभी गुस्सा ना किया जाए. ठीक है रजी. वो जो हमसे कमजोर लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली ये हौसला नहीं कर सकते. मतलब मैं अपने छोटे बच्चे को अगर परे धक्का दे दूंगा तो वो मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं कर सकता. आज कल को पता नहीं क्या करेगा, लेकिन आज तो कम से कम कुछ नहीं कर सकता. तो दिस इज द टाइम, यही वो टाइम है जिसके बारे में ज्यादा कॉन्शियसनेस पैदा करके, और ये देखें कि क्यों आ रहा है गुस्सा. ये जब आप इसको, जिसको मैंने अभी सजेस्ट किया, रिफ्लेक्टिव जर्नल क्रिएट करना शुरू करेंगी, तो आपको अपनी हिडन थॉट्स सामने आनी शुरू होंगी कि मैं इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं इस वजह से इरिटेबल हो जाती हूँ ज्यादा इस मौके पर. और ये ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त ही सारा दिन आपको आता रहेगा. आप कुछ चीजों में इन्वॉल्व है. मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ, एक क्लास ले रहा हूँ, उसमें आकर कोई मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दे यहाँ से, घर से, तो मेरा रिस्पॉन्स और होगा. वरना अगर मैं आराम से बैठा हूँ, यू नो आई हैव नथिंग रियली इंपॉर्टेंट डूइंग, तो अगर माई ग्रैंड सन वुड कम टू मी और मेरी झोली में चढ़ के बैठ जाए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इस मौके पर मैं इरिटेबल हो जाऊंगा. मैं अपनी बेटी से कहूंगा कि तुम क्यों नहीं देख रही हो, मैं उसकी मेड से कहूंगा कि क्यों नहीं आप देख रही हैं, एंड सब लोग जो हैं वो, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व. तो आप किस चीज में इन्वॉल्व हैं उस वक्त और क्या अरेंजमेंट्स कर सकती हैं कि ये चीज आपको गुस्सा ना चढ़ाए. ट्राई टू राइट इट डाउन. आप ये देखिए, जो अभी आपने फरमाया ना जी कि आप नहीं कर पा रही हैं, बहुत अच्छी बात है. इनशाला मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप सिंसियर एफर्ट करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, ये जो मैं आपको टूल बता रहा हूं आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, एंड राइट बैक टू मी. मेरे ईमेल में मुझे लिखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी तरफ से आएगा जी कि मेरे अंदर कुछ डेवलप होना शुरू हो गया कंट्रोल, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड अबाउट इट, और अल्लाह का शुक्र अदा करूं उस पर. बट डोंट गिव अप. ये जिंदगी असल में इसी चीज की तो आजमाइश है जी. इसमें हौसला कभी नहीं हारना है. और अपनी लैंग्वेज को ना जी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं. यानी चेंज करने का क्या मतलब है? हमारी कुछ लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो डिसएम्पावरिंग है. डिसएम्पावरिंग का मतलब है कि मैं ये नहीं कर सकता. अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं जिम्मेदार भी नहीं हूं. मैंने अभी इसके अंदर एडिक्वेट मेहनत नहीं की है, मुझे मैं अभी तक ये नहीं कर सका हूं, मुझे और मेहनत करके इसको करना है। तो ये जो अपनी लैंग्वेज है इसको ज्यादा एम्पावरिंग लैंग्वेज बनाए कि मैंने अभी तक जितनी मेहनत की है वो नाकाफी हुई है, इंशाल्लाह अब ज्यादा करनी है। अल्लाह ताला आपकी और मेरी सबकी मदद फरमाएगा इंशाल्लाह।
आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर मैंने बहुत कोशिश करके खुद को सुधारा है, मैं बहुत पजेसिव और गुस्से वाली थी बहुत ज्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद पे बहुत वर्क किया है। बस अब जो सिर्फ मेरे बच्चों पे अक्सर मुझे बहुत इरिटेशन हो जाती है, और बेटी मेरी समझदार है, 9th क्लास की स्टूडेंट है, तो तब मुझे होता है कि ये समझती है लेकिन फिर भी मेरा साथ नहीं दे रही मेरे काम में, मतलब मुझे समझने में नहीं समझ पा रही, ऐसा कुछ मुझे फील होता है, जिस वजह से मुझे गुस्सा आता है कि मैं बता चुकी हूँ कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसे ना करो, लेकिन नेक्स्ट में फिर वही हो रहा है, तो तब मुझे इरिटेशन ज्यादा उस वक्त हो जाती है कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा मसला कर रहा है।
मैं आपसे अर्ज करता हूँ विदाउट बीइंग क्रिटिकल अबाउट एनीथिंग। देखिए मेरा खुदा ना खास्ता इस मामले में मैं इस पोजीशन ही में नहीं हूं कि किसी पर क्रिटिसाइज कर सकूं, मैं तो खुद मोहताज हूं इंप्रूवमेंट का। इसलिए एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो बात आपने फरमाई है इसके अंदर देखिए कितनी ज्यादा, अगर थोड़ा सा इसके अंदर डीपली जाएं तो कितना सबक है। आपने अभी ये फरमाया है जब बात का आगाज करते हुए कि आप जानती हैं कि कुछ चीजें अच्छी हैं लेकिन आप कर नहीं पाती हैं। ये जब हम रिकग्नाइज कर लेते हैं अपने अंदर तो फिर अब हमारे अंदर एम्पथी पैदा हो सकती है अपनी उस बेटी के लिए भी जिसको हमने अभी समझाया है लेकिन वो फिर वही काम कर रही है। ठीक है जी, वो भी असल में इसी चक्कर में है, उसको भी अभी बात अपने दिल से समझ नहीं आ पा रही या वो कंट्रोल नहीं डेवलप कर पा रही, उसके लिए अपने दिल में रहम क्रिएट करना शुरू कर दे। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगी
बिल्कुल
और मैं भी ठीक
सर,
हो जाऊंगा, सब ठीक हो
इंशाल्लाह
जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश नहीं छोड़नी है, दिस इज द मोस्ट
इंशाल्लाह
इम्पोर्टेंट।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जजाकल्लाह सर, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत
थैंक
जजाए
यू,
खैर दे,
आमीन
बहुत
आमीन।
शुक्रिया बहुत शुक्रिया।
वालेकुम सर, कैसे
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
हैं सर? अल्लाह के
शुक्र
शुक्र
अल्लाह के।
सर। अच्छा सर, मैं आज के लेक्चर से ये समझूं जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है कि अगर कोई इवेंट ऐसा हो जाए नेगेटिव और पॉजिटिव और उसको आप रिकॉर्ड कर लें तो आप बेहतरी की तरफ अपने आप को लेकर जा सकते हैं, लेकिन सम टाइम जिसे कहते हैं हीट ऑफ द मोमेंट, उसमें आप आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आप रिटोरिक क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई टॉन्ट कर रहे हैं या कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या इस प्रैक्टिस से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? इवन दो कि हम उस वक्त रियलाइज, उसके फौरन बाद रियलाइज हो जाता है, लेकिन वो जो हीट ऑफ द मोमेंट होती है उसमें रियलाइज भी नहीं होता अक्सर औकात।
क्वाइट राइट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। ये जिसको आपने फरमाया इन द हीट ऑफ द मोमेंट, हमें बगैर रियलाइजेशन के और बगैर अवेयरनेस के हमारी तरफ से एक एक्शन हो जाता है, इसको रिएक्टिविटी कहते हैं जी, वी बिकम मोर रिएक्टिव। और ये इसकी कई वजूहात हैं, इसको भी समझना बड़ा जरूरी है और मेरा ख्याल है कि इसको समझ के काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। हमें ये जो ख्याल है ना जी कि अगर कोई गुफ्तगू हो रही हो या कोई बातचीत हो रही हो तो फौरन रिस्पॉन्ड करना है, ये ख्याल हमारे अंदर असल में कंडीशनड है। ये बात कि किसी ने कुछ कह दिया है तो अब जरा थोड़ी देर के लिए गौर करके फिकर करके समझिए सोच के अपनी अपने प्रिंसिपल्स को सामने रख के हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम ये क्यों नहीं करते? इसमें टाइम लगेगा और हमको बचपन से ये कंडीशन दी गई है कि अगर कोई इशू पैदा हो गया है तो इसको विन लूज सिचुएशन बना लेते हैं हम। ठीक है जी, अगर मैंने फौरन जवाब नहीं दिया तो मैं हार जाऊंगा और अगर बात यहां पर नहीं हुई तो मैं फिर आई आई डोंट नो, इसका मतलब है मैं नहीं जानता हूं, मुझे ये इंप्रेशन नहीं देना है कि मैं नहीं जानता हूं, मुझे तो फौरन जवाब देना है। ये जो कंडीशनिंग है हमारी, अगर आप याद करें तो ये स्कूल में हुई है, आपको याद होगा बचपन में, और बचपन में भी और घर में भी, स्कूल में भी घर में भी, बचपन में और फिर अर्ली एडोलेसेंस के टाइम तक आप अगर गौर करें, एडोलेसेंस के टाइम तक, तो वो असल में आपको अगर टीचर ने सवाल किया है तो आपको फौरन हाथ खड़ा करके जवाब देना चाहिए। इफ यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट तो टीचर भी आपको कहती है कि नहीं तुम्हें नहीं आता, किसी और से पूछ लेती हूँ। तो वी नीड टू बी क्विक इन आवर आंसर्स, ये कोई अल्लाह ताला का फैसला नहीं है कि आपको जल्दी जवाब देना है, रोक लें। और रोक कर गौर करने कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है चीज, ये असल में उन रिएक्टिविटी के मवाकों ही में आपकी मदद करना शुरू कर देगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंट एफर्ट करनी पड़ेगी कि आप ये जर्नल वाकई लिखें फॉर द लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 20 डेज। अगर आप लिखें 20-25 दिन लिखें और फिर अगर आप समझते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ, छोड़ दें और मुझे भी बता दें कि तुमने ये जो सजेस्ट किया था इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आपको अपने तजर्बे से, अपने अपने साथियों के तजर्बे से ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दिस एफर्ट। आप इसको 20-25 दिन करके देखिए, लुक बैक ऑन योरसेल्फ, आपकी रिएक्शंस कुछ कंट्रोल में आए, सारे नहीं आएंगे कंट्रोल में, देखिए ये तो एक लाइफ लॉन्ग जिद्दोजहद है। आपको जब आप महसूस करेंगे कि अब मैंने सारे रिएक्शंस कंट्रोल में कर लिए, तो असल में अपनी ये आपकी गलती होगी, बहुत सारी चीजें फिर से होनी है जो कि बिल्कुल नहीं होंगी, जिनको आप बिल्कुल नहीं फोर्सी कर रहे थे, उस मामले में फिर आप रिएक्टिव हो जाएंगे। बट दिस जर्नलिंग इज गोइंग टू कीप हेल्पिंग यू और इनशाला हमारी डायरेक्शन ठीक तरफ हो जाएगी कि हमने अपनी पर्सनल साथी इम्प्रूवमेंट का काम करना है। हमदा साहब, मैं आपकी बात का जवाब कुछ दे पाया हूँ जी, मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूँ समझ में आ गई जी बात?
जी सर, थैंक यू,
मोस्ट वेलकम जी, बहुत शुक्रिया जी।
सब ये जर्नलिंग का जो है ये मैं लास्ट 3 ईयर से कर रही हूँ, लेकिन right. मुझे तो जब मैं देखती हूँ, मैं कुछ इश्यूज में अभी भी एक ही तरह का पैटर्न लिखती जा रही हूँ और उसमें कई दफा मैं भूल जाती हूँ, तो मतलब वो रिफ्लेक्टिव कि मतलब अपना बिहेवियर चेंज करूँ, लेकिन right. वो नहीं हो रहा
right.
इसमें मैं मतलब क्या गलती क्या कर रही हूँ या समझ नहीं रही हूँ, ये चीज मुझे थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें।
मेरी गुजारिश ये होगी जी कि एक दफा ये जो टॉपिक है ना जी पूरा, यानी एक दफा उसको देख लें, अगर आप महसूस करते हैं कि आप ये सारी चीजें लिख रही हैं जो यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीजें उसमें आनी चाहिए, अगर आप महसूस करते हैं कि नहीं ये सारी चीजें आप लिख रही हैं, तो फिर मुझे एक दफा अलग से अगर आप पसंद फरमाएं तो मुझे अपने एक जर्नल की एक सैंपल भेज दें, मैं उसको देख के आपको बता सकूंगा। इसके बगैर मुश्किल है, मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूँ उसमें बड़े असेंशियल एलिमेंट्स हैं, यानी जिधर गलती हो जाए उधर आपने अपने आप को सजेस्ट भी करना है और इसको लिखना है कि मैं आइंदा ये कोशिश करूंगी, ठीक है जी, दिस इज हाउ आई कैन इम्प्रूव माई थॉट्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो जो नहीं हो पाएगा आपसे वो ये है कि या तो आपकी थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, ठीक है जी, यू आर बीइंग स्वेड बाय एन ऑटोमेटिक थॉट और उसको हमने एक कॉन्शियस थॉट बनाना है, और या फिर कोई फीलिंग्स हैं जो किसी मेंटल पैटर्न की वजह से। सो इफ यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट, आप इसको एक दफा एक नजर देख लीजिएगा, ये जो मैंने आज आपसे शेयर किया है, अगर आप महसूस करते हैं कि नहीं ये सारी चीजें जो इसमें लिखी हुई हैं वो आप लिख रही हैं, तो फिर मुझे एक दफा अपनी एक जर्नल एंट्री, अपनी सैंपल जर्नल एंट्री भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह वी कैन टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह।
ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी,
मोस्ट वेलकम जी।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अच्छी आदतें डेवलप हो जाना जो है वो अच्छा है, मतलब अनइंटेंशनली हम कोई अच्छा रवैया अख्तियार कर लें ये अच्छी बात है या ऐसा नहीं होना चाहिए?
नहीं देखें, आप अच्छी आदत डेवलप कर लें ये बड़ी अच्छी बात है, यानी आप ये फरमा रही हैं कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम अच्छे काम कर रहे हो।
जी जी जी,
ये होता कम है जी। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ क्यों कम होता है, ये मैं वजह बता देता हूँ। हम आम तौर पर जो अच्छा स्टेप है ना जी, वो उसके लिए एफर्ट चाहिए होती है, उसकी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, अगर हम उनके बारे में इफ वी आर नॉट वेरी कॉन्शियस ऑफ देम तो अनकॉन्शियसली हम उस तरफ जाते नहीं है। ये ऐसे ही है जिस तरह से पानी को अगर आपने ऊपर की तरफ लेके जाने तो आपको फोर्स प्रेशर यूज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपको महसूस होता है कि हम अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में एक खास तरह बिहेव कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग मच अबाउट इट, तो ये असल में अच्छा एक्शन है नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो उस एनवायरमेंट में शायद आप ना कर रहे हो। یا مثال کے طور پر ایک اور مثال لیجیے کہ دبئی میں آپ جو ٹریفک کے رولز ہیں ان کو ہر آدمی فالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن کیوں فالو کر رہا ہے؟ بیکاز ایوری بڈی تھنکس کہ اگر میں نے نہ فالو کیا تو کوئی چانس نہیں کہ میں بچوں گا, نمبر ایک میں پکڑا جاؤں گا, نمبر دو میں جب پکڑا گیا تو پھر اس کے بعد مجھے آئی ول ہیو ٹو بیئر دا برڈن آف دا لا, مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا. پاکستان میں یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اس میں ہم نے عادت بنا لی ہے, لیٹ سے ایک آدمی نے ایک عادت بنا لی ہے کہ میں نے ہر دفعہ لال بتی پہ رکنا ہے, تو یہ شروع میں ایفرٹ تقاضا کرے گا, اس چیز ایفرٹ تقاضا کرے گی اس کام کو کرنے میں, اور آہستہ آہستہ یہ اٹ بیکمز ایزیئر. ابھی جو میں نے آپ کو مثال کے طور پر یہ بتایا نا جی, لرننگ جرنل بھی ہے, ریفلیکٹیو جرنل بھی ہے, یہ جو جرنلنگ کی ایکسرسائز ہے جب آپ اس کو شروع کریں گے تو آپ کو پہلے دن ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لگ جائے, ہو سکتا ہے 40 منٹس لگ جائیں, کیونکہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں آپ, آہستہ آہستہ یہ ایفرٹ لیس ہونی شروع ہو جائے گی چیز, تو اس لحاظ سے تو پاسبل ہے, لیکن اچھا کرنے میں جنرلی اٹ ول ٹیک اے کانشیس ایفرٹ. کہتے ہیں جی ہم بچپن سے ایک حدیث سنتے آ رہے ہیں کہ برائی کو ہاتھ سے, زبان سے, اور آخری درجے میں دل سے برا جانے, اس پر میرا خیال ہے جی کسی ریلیجس اسکالر سے بات کی جائے اور ان کی رائے لی جائے. میری جو یہ رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے دائرہ اختیار میں ہو سکتی ہے بات, جس طرح سے جاوید صاحب فرماتے ہیں. مجھے ایک اور بڑی پرابلم ہے اس روایت میں, صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے دائرہ اختیار میں ہے, یعنی انسان اگر یہ اتھارٹی رکھتا ہے کسی چیز کے اوپر, لیٹ سے میں اپنے بچوں پر یہ اتھارٹی رکھتا ہوں کہ میں ان کو برائی سے روک دوں مطلب وتھ فورس روک دوں, تو اس کے نتیجے میں کیا وہ برے کام سے نفرت ڈیولپ ہو جائے گی ان کے دل میں؟ میں نہیں جانتا ہوں, نہ میرا یہ خیال ہے جی. برے کام سے نفرت اصل میں انٹرنلائزیشن سے ہوتی ہے, کسی کے فورسفلی روک دینے سے نہیں ہوتی ہے. اس لیے میرے تو اس روایت کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں جی. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے, میں اس کے بارے میں آئی ایم ویری اسکیپٹیکل کہ لوگ جو ہیں بڑے آرام سے یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ اصل میں ہو سکتا ہے صحابی نے جو سمجھا ہو وہ اس میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو. ہم حدیث کا جو پورے کا پورا ذخیرہ ہے وہ جس پریمس پہ بیسڈ ہے اس کو سمجھ لیں, اور پھر اس پہ آپ غور کر لیں کہ کیا یہ پریمس ٹھیک ہے, یعنی اس کی کچھ ازمپشنز ہیں. میں ان ازمپشنز کے بارے میں آپ سب کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. حدیث یہ کہتی, یعنی حدیث کے پورے کا پورا فن رجال اور یہ ساری چیزیں جو علم الحدیث میں شامل ہیں, وہ ان کی ازمپشن یہ ہے کہ ایک سچا آدمی, ایک فہیم آدمی, ایک دیانتدار آدمی جب بات کہے گا تو وہ ٹھیک ہوگی. یہ بات جو ہے یہ فیکچول نہیں ہے. یعنی ایک سچا فہیم دیانتدار بہت عقل مند آدمی غلطی کھا جاتا ہے, اور دین کے معاملے میں جب آپ اس چیز کو سامنے رکھیں تو حدیث میں جو چیز بیان ہو رہی ہے آپ اصل میں یہ کہیں مثال کے طور پر کہ بخاری نے اس سے سنا ہے کہ اس, یہ ہر دفعہ وہ پوری سند بیان کر کے کوشش کر کے دیکھیں کہ یہ سارے ہر لیول پہ بات ٹھیک سمجھی گئی ہے اور ٹھیک کہی گئی ہے اور پھر مجھ تک پہنچی ہے. اس کے اندر بڑی پرابلم پیدا ہو جاتی ہیں جی. اس وجہ سے میں اس کے بارے میں بہت زیادہ, ایک تو میں کوالیفائڈ نہیں ہوں جی, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی شوڈ بی ٹاکنگ مچ اباؤٹ اٹ, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ آئی تھنک اس ازمپشن پہ ضرور غور کیجیے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے, کہ آپ کو اطمینان ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر سچے آدمی کو ایسے جو بات سنی جائے وہ ٹھیک ہوتی ہے, لازمن اٹ از دا ایبسلوٹ ٹروتھ کہ اس نے اگر کسی کو اسکرائب کیا ہے یہ بات کہ یہ اس نے یہ کہی تھی. یہاں پر لیٹ سے تھوڑی دیر کے لیے ازیوم کر لیں کہ سب لوگ جو ہیں بیٹھے ہیں بالکل سچے ہیں, بڑے فہیم ہیں, دیانتدار ہیں, سمجھدار ہیں, اور یہ وہ بیان کرتے ہیں جا کے کہ جو میں نے ابھی حدیث کے بارے میں کہا ہے تو وہ کیا کہا ہے, آپ یقین کریں کہ یہ باتیں جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ میں کوئی ریلیجس ذہن سے بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جو بات ہے کہ جب کوئی حدیث آتی ہے تو یہ لازمن اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کی بات ہے, یہ اس کے لیے ہمیں کوئی سورس چاہیے اس پر یقین کرنے کے لیے, جس جو میرے پاس نہیں ہے جی, سیریسلی نہیں ہے. میں اللہ کے پیغمبر کے آگے تو سر تسلیم خواہ میں, اگر انہوں نے کہا ہے تو اس پر کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا. سوال یہ کہ جس چین سے یہ مجھ تک پہنچ رہی ہے بات, इसके बाद मैं तो हर आदमी के बारे में ये बिलीव करने लग पड़ा हूँ कि ये अल्लाह का पैगंबर, ये कैसे हो सकता है?
अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम।
सबसे पहले तो मैं आपको थैंक करना चाहती हूँ कि आपके जो लेक्चर्स हैं इतना सब्सटेंस होता है जी उनमें, एंड ऑल्सो द वे यू कन्वे एवरीथिंग, मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहती हूँ जी। और उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि सर हम कभी भी जस्टिफाइड नहीं होते नाराज होने में या गुस्सा निकालने में, क्या पेंट अप रहना मतलब अच्छा होता है? क्या उसे फ्रस्ट्रेशन माउंट नहीं करती? और वो जो कहते हैं ना कि टू लेट आउट स्टीम, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब वैसे ही एक मेरे दिल में
आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। मैं एज वी प्रोग्रेस इंशाल्लाह, अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो असल में थोड़ी सी अंडर कुक्ड है। अभी हम सिर्फ बेसिकली इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो है ना जी ये रिफ्लेक्टिव जर्नल, इसमें मैंने कॉन्वर्सेशंस की गाइडलाइंस के हवाले से बात की है, ना कि प्रिंसिपल्स। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एज वी बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस ऑफ आवर फीलिंग्स एंड आवर थॉट्स, वी नीड टू रेगुलेट देम, नॉट सप्रेस देम। मैंने बार बार जो वर्ड यूज किया है वो रेगुलेशन का है जी। गुस्सा चढ़ना एक नेचुरल चीज है, बल्कि गुस्सा क्या चढ़ना, एवरी इमोशन, टू फील फ्रस्ट्रेटेड, टू फील इंटरेस्टेड, टू फील एंगेज्ड, टू फील डिस्ट्रैक्टेड, ये सारी इमोशंस जो हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये नेचर ने हमारे अंदर पैदा की हुई है, अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है। इनमें से किसी इमोशन को भी गलत नहीं है वो, अलबत्ता जो इशू है और जिससे हम असल में सबक ले सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं वो ये है कि ये जो इमोशन है ये मेरे अंदर पैदा क्यों हो रही है। अगर किसी थॉट से पैदा हो रही है तो मैं उसको थॉट को चेंज कर सकता हूँ। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, यानी ये बात कि मैं एक आदमी को की गाली सुनकर तो तैश में आ जाऊं, ये वो इमोशन है कि जो जिसमें एक मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व है मेरा। जैसे ही उसने सुनी मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं इमीडिएटली गुस्से में आ गया हूं, और वो मेंटल पैटर्न ये है कि गाली गलत होती है। गाली गलत नहीं होती, पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट है जो उसको गलत बनाता है। ये भी एक सोशल मेरी लर्निंग हुई हुई है। अच्छा, और ये कि गाली जो है वो जाहिर है कि मुझे समझ में आएगी तो गलत होती है, वरना हो सकता है वो जो कहा था ना किसी ने कि एक लतीफा है वो कि एक अरब से लड़ाई हो गई तो मैं उसको गालियां दे रहा था और मुझे कुरान सुना रहा था, तो ये भी एस्पेक्ट है कि वो उसकी बात समझ नहीं आ रही तो मुझे कोई आई वोंट फील एंगर्ड बाय इट, इट इज माय परसेप्शन, इट इज माय परसेप्शन। सो इफ आई चेंज माय परसेप्शन और इफ आई रिव्यू माय परसेप्शन, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मुझे ये समझ में आए कि यहाँ पर मेरी परसेप्शन चेंज भी हो सकती है, कुछ डिफरेंट हो सकती है। गुस्सा कब ठीक होता है जी, यानी इसकी बेहतरीन मिसालें जो आपको मिलेंगी वो तारीख में मिसाल के तौर पर ये बात कि मैं अल्लाह के लिए गुस्सा करूंगा, मैं अल्लाह के पैगंबर के लिए गुस्सा करूंगा, मैं अल्लाह ताला की, मैं अपनी ईगो के लिए गुस्सा करने को अवॉइड करूंगा। अगर किसी ने मुझे नई अहमियत दी है तो मैं फिर भी उसको मैसेज कर दूंगा और जो मैं कहना चाहता हूँ मैं कह दूंगा अच्छी तरह से, मतलब इन अ गुड वे मैं उस तक बात कम्युनिकेट करूंगा। लेकिन जिधर मुझे ये महसूस होता है कि नहीं यहाँ पर मेरे मेरे दीन का मेरे मजहब का ये तकाजा है कि मुझे इस बात पर गुस्सा चढ़ना चाहिए, और वहां पर भी इंसानों को मद्देनजर रखते हुए कि इट इज नॉट अबाउट व्हाट आई बिलीव इन, इट इज अबाउट व्हाट द ट्रूथ इज, और इन चीजों में गुस्सा चढ़ इनको रेगुलेट करके लेके जाना है जी। अपने आप को अल्लाह ताला का बंदा बनाते हुए मैंने अच्छा इंसान, अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छी इंटरेक्शंस ये पैदा करने हैं, सो दैट माय इन्फ्लुएंस एंड माय इम्प्रूवमेंट इज नॉट हिंडर्ड। इसको सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां भी होंगी, और गलतियों में से सीखना जो है वो गलती को एक एसेट भी बनाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम अगर नहीं सीख रहे गलती से तब है जो सीरियस लाइबिलिटी है जी हमारे ऊपर। बट आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि हम अपने अपनी इमोशंस को सप्रेस करें। मेरी सजेशन, जैसा कि आगे चल के ज्यादा वाजे होनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, वो ये है कि हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट करें, हम अपनी इमोशंस को नेविगेट करें। ये जो इमोशंस की नेविगेशन है इसके नतीजे में वो सप्रेशन नहीं रहेगी आपको, यानी वो जो आपने कहा था ना टेकिंग आउट द हीट और थिंग्स, वो हीट ही खत्म हो जाएगी अगर, यू डोंट नीड टू टेक इट आउट। असल में जिस वक्त मैं مثال کے طور پر غصہ چڑھے اور میں چپ کر کے بیٹھا ہوں تو مجھے میری شکل بھی دکھ رہی ہوگی کہ میں اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہوں. یہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں چپ ہوں لیکن میرے بچوں نے کہا ہے کہ آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے بیکاز آئی ایم سپریسنگ سم. بٹ اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ اف آئی ریگولیٹ مائی ایموشنز وہ اصل میں اندر غصہ رہے گا ہی نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ غصے کی ایموشن ختم ہو جائے گی, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ نہیں میں کہہ رہا. وہ تو نیچرل ہے, وہ رہے گی اور وہ رہنی چاہیے, دیٹ از واٹ لائف از آل اباؤٹ. اصل چیز یہ کہ وہ اس موقع پر غصہ جو ہے وہ مجھے کنٹرولنگ افیکٹ نہیں دے گا. پھر آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوئسچن.
تھینک یو سو مچ سر جی, ویلکم. آئی ہیو گاٹ یور پوائنٹ.
تھینک یو
جی. رفیہ صاحبہ آپ اپنا سوال
پوچھیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نیویگیٹ کرنے کو, اس کی ذرا مجھے سمجھ نہیں آئی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں. I can't take rudeness from anybody. It can be anybody, friends, servants, spouse, children. اب ایک چیز ہے اور میں نے بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ بٹ ڈونٹ بی روڈ. اب آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر ان اسپائٹ آف مائی ریکویسٹ ٹو ایوری ون اف سمبڈی از اسٹل روڈ تو میرے میں فرسٹریشن پیدا ہوگی. Now you want me to control that frustration, the anger, the irritation. If I continue doing it, then it affects me very badly. Don't I need to express it? Please, I have made my point. In spite of this, this is happening. It is affecting me very badly. So, aap navigate ka kya aapka matlab hua? I didn't follow it.
دیکھیے یہ جو بات ہے, آپ نے جو ابھی اس کی مثال دی بڑی اچھی مثال دی ہے دیٹ سمبڈی از بینگ روڈ. آپ یہ اس کے ساتھ شیئر کریں گی کبھی کہ یو نو دس از واٹ آئی ایم فیلنگ ایٹ دس ٹائم, آئی فیل دیٹ یو آر بینگ روڈ ود می, یو نو, اینڈ آئی ایم فیلنگ ریئلی ہرٹ بائی دیٹ. ان دس ٹون کین یو ڈو دیٹ؟ And if the other person says that, no, no, I was not being rude, I was just preoccupied, you know, I had something else in my mind and suddenly, you know, you wanted a reply from me immediately. So, I blurted it out, I didn't intend to be rude. Kya ho kya raha hai sara kuch? Ye insano ke interaction ki ek badi khas baat hai ji. Insan, jo aap hai, hum bhi asal mein mehz actions ko nahi dekh rahe hai. Hum actions se infer kar rahe hai. روڈنیس جو ہے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان آپ کے میرے سامنے آ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی اب میں ذرا روڈلی بات کرنے لگا ہوں تو آپ کو غصہ چڑھنا چاہیے. نہیں, یہ میری انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ بات روڈ ہو گئی ہے. اور یہ انٹرپریٹیشن کیسی ہوئی ہے, یہ میری سوشل ٹریننگ, میری سوشل کنڈیشننگ اس میں انوالوڈ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا میرا سرونٹ جو ہے وہ میرے سے کیسے بات کرے, میں سرونٹ سے کیسے بات کروں, دیٹ از ناٹ اے میٹر آف روڈنیس اور پولائٹنیس اور اینی تھنگ. آئی ایم بینگ کائنڈ ٹو دا سرونٹ. لیکن جس وقت میرا سرونٹ میرے ساتھ یہ کہے کہ نہیں نہیں ابھی میں یہ نہیں کر سکتا, تو دس از روڈ. تو واٹ از روڈنیس اینڈ ویئر, ہاؤ وی ڈیسائڈ دیٹ دس از روڈ؟ اینڈ Just think about it. These are all mental patterns. یہ ہے جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ mental patterns ہیں. جس وقت میرے سامنے میرا غصہ جو ہے وہ mental patterns کی بیس پہ چڑھے گا اور میں ان کو سمجھنے لگ پڑوں گا. دیکھیے ایک آدمی نے یہ کہا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ آدمی انسیڈنٹلی میرا سروینٹ تھا, ٹھیک ہے جی. اب میں نے یہ سمجھا کہ یہ بچہ جو ہے, یہ لڑکا جو ہے, یہ بندہ, یہ اصل میں میری بےزتی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بہت سارے انفرنسز ہیں, حالانکہ اٹ مائٹ بی اے سمپل سٹیٹمنٹ آف فیکٹ, اور واقعی مجھے ہو سکتا ہے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو, بٹ دس از سم تھنگ وچ از ناٹ سوشلی ایکسیپٹیبل فار می ود مائی ٹریننگ. اسی طرح سے بچہ جو ہے وہ کس انوالومنٹ میں ہے, کس جگہ پہ کھڑا ہے. واٹ آئی ایم سجیسٹنگ از دیٹ, دیکھیے اس دنیا میں جو لوگوں نے میرے ساتھ کرنا ہے نا جی, وہ میں اس کو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں سیریسلی کہ وہ اصل میں مجھے اپرچونٹی دیتے رہیں گے. دا پیپل اراؤنڈ می, دے ول کیپ ٹیلنگ می, دے ول کیپ گیونگ می دی اپرچونٹی دیٹ یو نیڈ فردر امپروومنٹ ان یور سیلف. تمہارے کچھ ابھی بھی مینٹل پیٹرنس ٹھیک نہیں ہوئے ہیں, اور یہ اپرچونٹی مجھے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بہتری کی طرف لے کے جائے گی. میرے لیے یہ امپورٹنٹ بات ہے اور اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے جی. ورنہ سچی بات یہ ہے دیٹ اپنی سیلف امپروومنٹ ایک ایسے ماحول میں کرنے کی کوشش کرنا کہ جس میں ہر جگہ سے آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ پیپل آر ٹاکنگ ٹو یو روڈلی، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. آپ اس کو ختم کرنا شروع کر دیں اپنے اندر سے. پیپل آر ناٹ ٹاکنگ ٹو یو ڈفرنٹلی اور روڈلی، پیپل آر اونلی پرووائڈنگ یو دی اپرچونٹی ٹو بی اے بیٹر پرسن، اینڈ وین یو میٹ گاڈ یو ول انشاء اللہ میٹ ود اے کلیئر کانشیئنس. یہ جو ایسپیکٹ ہے جس طرح جس طرح میرے اندر زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، آئی بلیو دیٹ اٹ ول اونلی بینیفٹ می. یقین کریں اور کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے کم از کم ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ.
وہی سب، سم ٹائمز یور چلڈرن سنیپ ایٹ یو روڈلی، سم ٹائمز فرینڈ سے تھنگز ان ا ویری روڈ مینر. آئی ڈونٹ تھنک اٹس ہیومنلی پاسبل فار یو ٹو، ایٹ لیسٹ فار می ٹو سے اچھا بھی کوئی بات نہیں ہے، اوکے لیٹ می جسٹ اگنور اٹ. آئی ایم اے ہیومن بینگ، آئی ریئیکٹ، آئی فیل، بٹ پلیز اچھی طرح بات کر لو.
آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ دیٹ یو شوڈ اگنور اٹ. میں نے تو ابھی پہلی بات یہ کہی تھی، ابھی آپ سے جو پہلی بات جو میرے پورے جواب کا آغاز تھا وہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے اس سے میں ہرٹ ہوا ہوں، مجھے لگا کہ آپ نے روڈلی یہ بات کی ہے، تو ڈو یو فیل دیٹ آئی ایم جسٹیفائڈ ان فیلنگ ہرٹ؟ اس میں اگنور کرنے کو تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یہ کر کے دیکھیے، اپنی فیلنگس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے دیکھیے. ہم اصل میں یہ کہنے کو، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک چیز، کہ ہم عام طور پر اپنی ولنریبلٹیز بالکل شو کرنا پسند نہیں کرتے جی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کبھی یہ کسی کو نہیں کہتے کہ میں ہرٹ ہوا ہوں. اور یہ ہرٹ ہے اصل میں، آپ سب لوگوں کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. کبھی غور کیجئے گا دیٹ مینی ٹائمز وین یو ول فیل ریئلی اینگرڈ، تو آپ بری طرح سے ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی چیز دوسرے میں ہو رہی ہوتی ہے. سم ٹائمز دی ادر پرسن ہو ہیز سنیپڈ ایٹ یو مائٹ ہیو فیلٹ ریئلی ہرٹ، لیکن وہ یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میں ہرٹ ہوا ہوں. یہ شیئر کر کے دیکھیے ایک دفعہ، سیریسلی ایک دفعہ کر کے دیکھیے کہ یو نو، ابھی جو آپ نے کہا مجھے، بیٹا بیٹی تم نے جو میرے ساتھ یہ بات کی اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور am I justified in feeling hurt. یہ کر کے دیکھیے، اپنی فیلنگس کو، اپنی ولنریبلٹیز کو دوسرے کے سامنے رکھ کے دیکھیے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. I think I need to try this. I just keep quiet. I think that's my problem.
When you keep quiet, you suppress your emotions. And then it's not that you just keep quiet. What happens is, under normal, I don't know whether you do it or not, but I think what normal people will do is, if somebody has been, in your perception, if somebody has been rude to you, and you keep quiet, it is not that you are not going to think about it. You will keep thinking about it. Aapko wo jo ek dafa incident hua hai, wo aapne 100 martaba apne dimag mein chalaya hai, aur uske natije mein ab main ye chahta hu ki wo jo maine apni emotion pe control kiya tha wo rahe. Aapko pata hai jitni dafa aap usko sochenge utni dafa wo emotional chemical phir se release ho jayega, aur wo emotion jo asal mein 6 second mein khatam ho jani thi, آپ اس کو اپنے کپڑے جھاڑ کے اٹھ جاتے اور ختم کر دیتے، لیکن اب وہ ختم نہیں ہوگی، وہ ہو سکتا ہے سارا دن آپ کے ساتھ چپکی رہ جائے. یہ پرابلم ہے، ہم اپنی ایموشنز کو تھوڑا سا بیان کر کے، اور وہ ایموشن یعنی کچھ سیکنڈری ایموشنز ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی سمجھنا، کہ جب پہلا مسئلہ ہوا کسی نے کہا کہ او یار تمہیں کیا پتا یار، تو مجھے غصہ بعد میں چڑھا ہے جب مجھے میری ہرٹ جو ہے وہ فیل نہیں ہو رہی کسی کو، میری پین جو ہے وہ دوسرا دیکھنے سے انکار کر رہا ہے، میں اس سے فرسٹریٹڈ ہوتا ہوں، اس سے غصے میں آتا ہوں. اگر پہلے ہی اسٹیج پہ میں یہ کہہ دوں کہ یار میں آئی ایم ریئلی ہرٹ، یار یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا تمہیں، سب کے سامنے تم نے یہ کہہ دیا، یہ تو یو نو اٹ ریئلی ہرٹ می، تو ہو سکتا ہے اگلا جو ہے وہ اپنی بات پر غور کرنے کو تیار ہو جائے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تھینک یو سو مچ بھائی صاحب.
جی مجھ سب، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی، آپ کی باتیں اتنی اچھی ہیں، وہ کیپٹیویٹو ہیں، میں نے بڑے غور سے سارا کچھ سنا. میں اس میں ایک چیز جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ جرنل لکھتے ہیں، ریفلیکٹیو یا اکیڈیمک جو بھی آپ جس طرح سے بھی لکھتے ہیں، آپ نے اس میں ہمیں سجیسٹ کیا ہے کہ اس میں آپ ایک طرف تو جو ہوا ہے وہ لکھیں، اور ایک طرف آپ یہ لکھیں کہ اگر اس کو چینج کیا جائے تو یعنی ڈفرینٹ ریئیکشن کیا جاتا تو کیا ہوتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ हम अक्सर ठीक भी होते हैं ना, यानी हम अपनी रिएक्शंस जो दे रहे होते हैं, जो सिचुएशंस होती हैं सारा दिन में गुजरी हुई, उसमें हम ठीक भी होते हैं। तो जब हम ठीक होते हैं तो फिर हमने उसको तो नहीं ना चेंज करना कि कुछ ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। एक तो ये एक कॉमन सेंस की बात है, मुझे लगता है कि उसमें नहीं लिखना होगा। लेकिन right. होता ये है कि हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, यानी हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, कोई इंटरेक्शन हो रही होती है, उसमें कोई हमारे लिए डिस्करेजिंग होता है, कोई हमें हमारी बात को समझ ही नहीं रहा होता, हमें इग्नोर कर रहा होता है या रूड हो रहा होता है हमारे साथ, तो हम हर्ट होते हैं, हम बहुत हर्ट होते हैं। तो क्या उसमें हम क्या लिखेंगे, यानी उसमें हम चेंज क्या करेंगे जिससे हमारी इम्प्रूवमेंट हो, उसमें हम क्या लिखेंगे चेंज?
नहीं देखिए, ये जो अभी पर्टिकुलरली बात हो रही है, अभी जो हम आगे इसमें जब एज वी प्रोग्रेस इन दीज सेशंस तो बहुत सारी चीजें आएंगी जी। ये जो चीजें कुछ आपने अभी जिक्र की ये भी आएंगी जेरे बहस, ज्यादा तफसील में भी आएंगी। अभी पर्टिकुलरली जो बात हो रही है वो हो रही है कॉन्वर्सेशन की गाइडलाइंस है। मिसाल के तौर पर आपने अभी फरमाया कि आम हालात में अगर मैंने ठीक किया तो मैं उसको नहीं लिखूंगा। मैं उन आम हालात की बात नहीं कर रहा जी, मैं असल में उसकी बात कर रहा हूं जिधर आपके जहन में एक रिएक्शन आया और आपने उसके बारे में अवेयरनेस से उसको ठीक कर लिया। ठीक है जी, इसकी बेहतरीन मिसाल हमको अपने से ऊपर के जो लोग होते हैं ना, चाहे वो हमारे बॉसेस हों, चाहे वो हमारे एल्डर्स हों, उधर बहुत ज्यादा मिल जाएगी। यानी मेरे दिमाग में एक चीज आई कि यार ये क्या कह रहा है मेरा बॉस है, कुछ पता तो है नहीं। लेकिन मैंने कहा यार अभी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने आप को रेगुलेट किया अंदर से, मैं उसको आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। मैं उन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ वेयर वी फेल्ट टेस्टेड, वेयर वी कुड हैव लॉस्ट अवर कंट्रोल बट वी टाइमली रिकग्नाइज कर लिया कि मेरी थॉट्स या मेरी फीलिंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है और मैंने उनको वापस अपने कंट्रोल में करके रेगुलेट कर लिया। ये वो एंट्री है जी। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने मेरे से प्यार से कहा कि अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, और मैंने जवाब दे दिया, नहीं ये नहीं है वो एंट्री। एंट्री वो तब है कि जिस वक्त एक आदमी ये कहता है कि जी आपके लेक्चर जो हैं, आपकी जो सेशन है उनमें तो कोई यू नो कोई सब्सटेंस ही नहीं है, और मैं उसकी बात सुनकर अपनी बात पर गौर करूँ और देखूँ कि क्या, और मैं ये पूछूं कि जी आपने कौन कौन से सुने हैं, हो सकता है कोई ऐसी चीज हो कि जो मैं उससे लर्न कर सकता हूँ। ये जो सारा एस्पेक्ट है ये तब होगा। मैं इमीडिएट जो रिस्पांस आया मेरे मेरे दिल में वो ये था कि तुम जानते क्या हो, लेकिन मैंने असल में अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने ठीक रिस्पॉन्स, ये है वो जगह जिधर के मुझे एंट्री करनी है अबाउट हैविंग एडहियर्ड टू द प्रिंसिपल, नॉट वन वेयर आई वॉज नॉट इवन टेस्टेड। वेयर आई वॉज टेस्टेड, मैं कुछ कर सकता था, मैं रिएक्ट कर सकता था, उधर मैंने नहीं किया और मैंने अच्छा रिस्पांस दिया, वो है जो मेरी एंट्री का की बात बनेगी। ये बात मैडम क्लियर हो पाई जी?
जी जी, मुझे समझ तो आ गई है, लेकिन मैं मुझे लगता है कि हमें एप्रिसिएशन की जरूरत भी तो होती है ना, जब हम ठीक कर रहे हैं तो वो एप्रिसिएशन हमें नहीं मिल रही होती और हम हमने कंट्रोल किया होता है अपने आप को, हम वो नहीं कर रहे होते जो जो कि उस वक्त रिएक्शन बनता है। तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, यानी हम अप्रिसिएशन चाह रहे हैं, हमें रिजेक्शन मिल रही है, हमारे साथ हमें बुरा भला कहा जा रहा है और हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर
नहीं, उसमें दो चीजें देख, सॉरी आप बात पूरी कर लीजिए।
जी जी, इट्स ओके, ये फिनिश हो गई है मेरी बात।
ठीक, हमें दो चीजों पे गौर करना है जी। एक ये कि जो मैं कर रहा हूँ उसका मोटिव क्या है, ठीक है जी, व्हाई एम आई डूइंग इट, और नंबर दो ये कि जिस नजर से मैं इसको देख रहा हूँ क्या वैसे ही है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो अपनी बेगम से कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि यू व्हाई आर यू बीइंग सो डिफेंसिव, ठीक है जी, और इस पर वो हर्ट होके गुस्से में आ गई या हर्ट हुई या फिर गुस्से में आ गई, वट एवर जो मैंने अभी बात करी की है। मैं अपने अपनी बात के अंदाज पे, अपनी बात करने पे, अपने वर्ड्स पे, अपने क्वेश्चंस पे गौर करूं खुद भी, ठीक है जी, मे बी आई एम नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड बिकॉज ऑफ सम थिंग्स दैट हैव बीन मिस इंटरप्रेटेड फ्रॉम माय पार्ट एंड आई हैव अ रोल इन देम, मैं बेहतर कर सकता हूं उन चीजों को. असल में जो चीज है ये समझ लीजिए कि ये हमारे इन पूरे सेशन में जो टारगेट है वो ये नहीं है कि मैं किस तरह से कामयाब हो जाऊं अपने मकासद में, असल चीज ये कि मैं किस तरह से कामयाब हो जाऊं अपने आप को बेहतर करने में, और इसमें फोकस सारे का सारा मेरा अंदर ही रहना है. ठीक है जी, मैं आपको शायद कभी आगे चल के हम जब ये बात करेंगे मिसाल के तौर पर कि हम किस तरह से हाउ कैन वी बी मोर अफेक्टिव इन शेयरिंग वेयर वी डिसएग्री, लेट्स से मैं किधर ये बात ज्यादा आसानी से कह सकता हूँ, जिधर मुझे आपसे इख्तलाफ है मैं कितना अफेक्टिवली उसको अच्छी तरह बयान कर सकता हूँ. तो लेकिन उसमें भी असल मकसद जो है वो यहाँ पर ये होता है कि मैंने समझना है कि मैंने समझा है, यू नो आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड माइट बी रॉन्ग. मैं उस नजर से देखने की कोशिश करूँ जिस नजर से दूसरा बयान कर रहा है, इसके नतीजे में आई विल लर्न मोर. इट इज ऑल अबाउट मी. ईगो सेंट्रिक किस्म के सेशन है ये बिल्कुल, दे आर ओनली कंसर्न अबाउट मी एंड इस चीज को सामने रखते हुए वी नीड अप्रिसिएशन बिकॉज समटाइम्स बिकॉज ऑफ आवर ओन पास्ट, इसको ध्यान में रखिए, कई दफा हमारा मोटिव क्लियर नहीं होता, हम अप्रिसिएशन पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं जी. और इस चीज के ऊपर भी हम इंशाल्लाह एज वी प्रोग्रेस वी विल टॉक अबाउट इट, इस तरह से हम इससे निकल जाए. हमको अच्छा करना है फॉर अ वेरी वेरी क्लियर सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लीजिंग गॉड एंड वी विल बी अप्रिशिएटेड. हमें अप्रिसिएशन मिल जाएगी अगर हमारी नीयत साफ है, हमें अच्छा मिल रहा है, और दुनिया में भी मिलेगी. ऐसा नहीं है कि हर जगह से ही नहीं मिलेगी आपको, कुछ लोग मुश्किल से करते हैं तो कोई बात नहीं, आपने अच्छा करना है. आपको फिर भी ये भी चीज आपके लिए लर्निंग में इजाफा करेगी इंशाल्लाह. बट आई फील कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने ऊपर फोकस करना है मुझे.
जी मैं मुझे समझ आ गई है कि ये असल में मैं पे बेस करता है कि मुझे खुद कैसे ठीक होना है. कोई नहीं भी तो मुझे ठीक करना है काम.
वो भी मेरी अपॉर्चुनिटी है, वो भी अपॉर्चुनिटी है जी. मुझे मैंने अच्छा किया, अपनी जान तो जान गुसल एफर्ट दी और फिर भी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो ये भी मुझे मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए. कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटीज हैं, यकीन करें आप. कभी शुक्रगुजारी की, कभी कभी सब्र आजमा हालात में डाल के अल्लाह ताला हमें वाकई नहीं छोड़ना चाहते कि उनकी खास रहमत है जी, वो हमें बेहतर से बेहतर बना देना चाहते हैं.
सर मुझे अपनी एक वीकनेस के बारे में आपसे पूछना था, और ना इसके अलावा मेरी एक सिस्टर ने अभी दो चार पार्टिसिपेंट से पहले डिस्कस किया था, तो एक मेरे पास ना छोटी सी प्रैक्टिकल सजेशन थी, तो वो मैं शेयर कर दूं आपसे.
जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम जी.
जी जैसे सर उन्होंने कहा ना कि वो गुस्सा करती हैं तो उनको पता है अपनी ये गलती ना, और वो जैसे उसको नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं. एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात आपने भी ज़ाहिर बयान कर दी कि ये ही सबसे बेस्ट है कि उन्हें पता है. तो मेरी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने ना बस थोड़ा बहुत सर्च करके और सीखी थी, और फिर उसके बाद अप्लाई किया तो मुझे काफी उससे फायदा हुआ. वो ये थी कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो ना किसी चीज पर, तो ना आप एक तो जब आप कूल डाउन हो नॉर्मल हालात में हो, तो आप ये अपने पास ये बात सोच लें कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो वो मेरा एनिमल ब्रेन होता है. ठीक है सर, आप सुन रहे हैं मेरी बात?
जी 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 बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, बिल्कुल सुन
रहा. तो ये मेरा एनिमल ब्रेन होता है, तो ये हमने एक नॉर्मल अपने आप को ना एक मैसेज दे दिया अपने ब्रेन को. जब हम गुस्सा कर रहे होंगे ना तो एक रिमाइंडर आएगा, वो आता है जरूर, और वो रिमाइंडर आएगा बात कहेगा कि ये काम मैं गलत कर रहा हूँ अपने लिए. तो ना वो रिमाइंडर आते ही बस उसको कैच करना होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाती है, तो रिप्लाई नहीं होता फिर क्योंकि. और दूसरी चीज ये होती है कि अब अगर बच्चों पे ही हो रहा है ना, तो बच्चों को ही रिमाइंडर बना दें कि बच्चों को बोलें कि जब मैं गुस्सा कर रही हूँ ना तो कोई ऐसा साइन बना देना तो मुझे समझ आ जाएगा. तो मैंने अपने बच्चों को कहा था कि हार्ट का साइन फिंगर से बना दिया करो.
बहुत अच्छे
वेरी नाइस. जैसे वो हार्ट का साइन बनाते हैं तो मैं अपने उस स्टेट में आ जाती हूँ कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ. और अपने आप को ये भी कहना है कि मैं मतलब एनिमल ब्रेन मेरे अंदर उस ना बढ़े, मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं गुस्सा करने वाली पर्सनालिटी नहीं हूँ. ठीक है, तो क्योंकि नॉर्मल हालात में नहीं होते लोग, वो तो उस कंडीशन में होते हैं ना जब गुस्सा आता है. तो फिर बच्चे अगर इस तरह से कोई साइन बना देते हैं ना तो नॉर्मल हो जाता है कंडीशन. ये एक प्रैक्टिकल मैंने करके देखा था तो मैंने कहा शेयर कर लूं कि शायद इससे किसी को फायदा हो जाए.
दैट्स वेरी नाइस जी. इसको एंकरिंग कहते हैं कि ये लेट्स से आप सॉरी
जी
आप फरमाइए.
जी सर ये थॉट प्रोसेस पे काम होता है क्योंकि ये एक अर्ज आती है ना हमारे माइंड में तो ये असल में इंटरनल ही सेटिंग होती है कि इंटरनली इंसान सेट हो जाता है.
बिल्कुल सही है
क्योंकि उसी से होता है कि वो और सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और फिर उसके बाद जब हम ऐसा सोचने लगेंगे तो इससे फर्क पड़ता है. और तीसरी चीज ये थी सर कि जो है ना गुस्से के ना नताइज हमेशा बहुत बुरे होते हैं ना, बहुत बुरे होते हैं. जैसे जो सहरा होता है ना गुस्सा, जो गुस्सा कर रहा होता
है
जी सर, तो जो गुस्सा कर रहा होता है उसका भी नुकसान होता है, जो सहरा होता है तो उसका तो बहुत ही बड़ा नुकसान होता है. बच्चे स्पेशली ना बच्चों का तो जहन डैमेज होने लगता है, फिर वो आइंदा फिर करेंगे तो ये चेन बन जाएगी. तो उसके जो नुकसान है वो लिख लें कि ये नुकसान इतना ज्यादा हो जाएगा. तो जो नुकसान हो जाएगा तो नुकसान से तो इंसान की नेचर है कि वो बचना ही चाहता है. तो जब बच्चे कोई साइन दे देंगे तो फौरन आ जाएगा कि भाई क्योंकि उसके बाद हमेशा रिग्रेट फील होती है करने के बाद. तो फिर ना फौरन ये हो जाएगा कि ये तो बहुत गलत काम हो गया, रिग्रेट होगी और हम होती है. तो फिर फौरन ही माइंड जब इस अर्ज पे इस पे जाएगा, इस छौत आएगी तो सेकंड उसको कवर कर लेगी तो इंटरनली सेट हो जाता है बंदा.
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेयर करने का जी. थैंक यू. आई होप आपका पैगाम पहुंच गया होगा जी जिन्होंने ये सवाल किया था उन तक भी. एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से जी?
एक मेरी वीकनेस है वो मुझे आप बताइएगा कि सर मुझे ना गलती का एहसास बहुत ज्यादा रहता है कि मैं मुझे गलती ना हो जाए किसी चीज में. इससे ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो रहा है. जैसे लिखने में गलती ना हो जाए, बोलने में गलती ना हो जाए, ये हो रहा है सर. ये क्या मतलब, ये क्या चीज होती है, क्यों होता है
ये बेसिकली परफेक्शनिज्म है जी. यानी आप इसकी कॉजेज में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो कॉजेज जो भी होंगी बहरहाल यू हैव टू ओवरकम दैट. ठीक है जी. आप अपनी जी
ये ओवरकम हो सकती है ये चीज.
एब्सोल्युटली जी, मेरा ख्याल है कि यही तो अल्लाह ताला का दिया हुआ बड़ा
बैरियर बन गया है. इसकी वजह से मैं बहुत सारी चीजें प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूं
जी. लेकिन ये ओवरकम हो सकती है जी. और ये ओवरकम करने के लिए आपको इस पे एफर्ट देनी, कोई भी चीज अल्लाह ताला की इनायत है ये हम पे कि ये हम ओवरकम हम अपनी गलतियों में से कर सकते हैं. खास तौर पे जैसे ही आपने ये रिकग्नाइज कर लिया कि गलती करने से खौफ पैदा हो गया है, गलती करने से डर पैदा हो गया है, तो इसमें एक चीज तो ये समझ लें कि अगर आप कोई काम करेंगी तो गलती होनी है. तो या तो आप काम छोड़ दें सारे, फिर कोई गलती नहीं करेंगे. जो लोग काम करते हैं वो गलतियां भी करते हैं, और गलती जो होती है वो हर गलती की डिफरेंट नौयत है. उससे आपने सीखा क्या है, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. इंसान बगैर गलती के, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी औलाद या मैं, जब मैंने चलना शुरू किया था तो मुझे मेरे माँ बाप जो हैं अगर ये कह देते कि नहीं ये उस दिन हमने इसकी टांगों की गिरें खोलनी है कि जिस दिन ये अब खुद से खड़ा हो सकेगा, तो मैं कभी चल ना पाता. मैं खड़ा होने की कोशिश करता था, गिरता था, खड़ा होने की कोशिश करता था, गिरता था, और ये प्रोसेस गिरने और खड़े होने का था जिसमें अल्टीमेटली मैंने चलना सीखा. ये गलतियां हैं, यही गलतियों की भी सिचुएशन है हमारी जिंदगी में. हम भी व्हेनेवर वी विल ट्राई टू डू समथिंग, हमसे गलतियां होंगी एंड वी विल इम्प्रूव थ्रू दैट. दिस इज द पार्ट वेयर वी शुड बी मोर कॉन्शियस ऑफ. ये नहीं कि गलती ना हो, अगर गलती ना हो आपकी जिंदगी का इशू है तो फिर तो कुछ करना नामुमकिन है जी. फिर क्या होगा, मैं आपसे
गलती हो जाएगी, अंदर से फीलिंग्स आ रही होती है. बोलने में भी होता है कि मैं शायद गलत बोल जाऊंगी, शायद मैं गलत लिख रही हूँ, लिखने में गलती हो जाएगी. ये चीज
मैं आपसे अर्ज करूँ, ये अभी भी होगी, आपके अंदर ये फीलिंग है तब भी होगी. और ये मैं जिस वक्त कभी कभी मुझे अपना कुछ क्लिप सुनने को मिल जाता है तो मैं यही सोचता रह जाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था. यानी इतनी गलतियां हो जाती हैं, ग्रामेटिकल भी हो जाती हैं, लैंग्वेज की भी हो जाती हैं. वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट, हम सीखते रहेंगे ये जिंदगी में. और जब भी आप परफेक्शनिज्म का शिकार होते हैं तो एक प्रॉब्लम पैदा होती है, आपको अपनी गलती मानने में बहुत मुश्किल हो जाएगी. ये एस्पेक्ट जो है इसको ध्यान में रखिए. क्वालिटी असल में गलती से सीखने की और गलती मानने की.
बहुत समझती हूँ कि अदर्स سوری سر.
جی جی فرمائیے.
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں دوسرے لوگوں کو بالکل رائٹ سمجھتی ہوں کہ وہ نہیں کر رہے ہیں غلطی یا وہ, لیکن مجھے اپنی ذات میں یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے, فیئر فیل ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے گی.
کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر کے دیکھیے گا. یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس پر اگر آپ چاہیں تو ہم الگ سے بات کر لیں گے, لیکن ایک چیز کو میں گارنٹی کر سکتا ہوں جی, دیٹ یو کین اوور کم دیٹ. یہ اوور کم کیا جا سکتا ہے ان شاء اللہ. موسٹ ویلکم جی.
جی مجھے یہ شور نہیں ہے کہ میرا کوشچن جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کہ نہیں, بٹ آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ اگر آپ اس کو آنسر کریں. سو میں تھوڑی سی آپ کو پرسنل ایک چیز شیئر کروں کہ میں جب چھوٹی تھی تو ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے. سو مائی مدر شی واز اے ویری کائنڈ, آئی مین وے ٹو کائنڈ پرسن, کہ جب ہمیں کوئی ڈانٹ دیتا تھا یا اگر باہر کسی نے ہمیں مار دیا یا کچھ بھی, تو ہم یا کسی نے زیادتی بھی کر دیا کسی ریلیٹیو نے کچھ بھی, تو جب ہم اپنی ماما کو بتاتے تھے تو وہ کہہ رہی تھی کوئی بات نہیں آپ معاف کر دو. لائک میرے پیرنٹس نے ہمیشہ یہی کیا, اور میں نے دیکھا کہ میری امی سے سب بہت پیار تو کرتے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سفر بھی کیا, وہ اب تک بھی کرتی ہیں. جیسے اگر وہ ابھی بیمار بھی ہیں تو ان کو گھر کے کام کوئی بھی آ جائے تو وہ نو نہیں کرتی, وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ وہ دوسروں کو پرائیورٹی دیتی ہیں. آئی تھنک اٹس ناٹ ٹو پرسنل اگر میں شیئر کروں. لائک میری بھابھی شی از ویری نائس, لیکن میری امی کی آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ وہ میری بھابھی کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی, وہ خود کام کریں گی, اس طرح کی وہ بیچاری کائنڈ ہیں. تو پھر ان کو دیکھتے ہوئے نا میرے اندر نا ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک باغی سی میں ہو گئی. لیکن ایز اے چائلڈ آئی یوز ٹو فیل ویری انپروٹیکٹیو کہ یار اگر کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا تو میری اماں نے تو مجھے ہی کہنا ہے کہ یار تم معاف کر دو. تو اب لائف میں آئی ایم 30 years old, سو یوزلی آئی ایم اے ویری کام اینڈ کائنڈ پرسن, خود سے میں کسی سے لڑائی نہیں کرتی, لیکن مجھے یہ پرابلم ہے کہ اگر کوئی میرے سے جیسا بیہیو کرتا ہے نا تو میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی بیہیو کروں, ادر وائز آئی ول اینڈ اپ لائک مائی موم, اور لوگ جو ہیں وہ مجھے یوز کریں گے. فار ایگزامپل ابھی جو ہے میں ایک اپنے کزن کی طرف گئی ہوئی تھی ان کی کنٹری میں, تو ان کا بیہیویئر میرے ساتھ اچھا نہیں تھا اتنا. سو دیٹ پرسن از ناؤ کمنگ اوور ٹو آر کنٹری, تو وہ ڈفرینٹ ریلیٹیوس کی طرف اسٹے کریں گے. سو میری ماما مجھے کال کری تھی کہ تم نے اس کو سیر کرانی ہے وہ, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مل لوں گی, بٹ میں جیسے انہوں نے بیہیو کیا میں بھی ایسے ہی بیہیو کروں گی. لائک میرے ذہن میں یہ کہ اگر میں کسی کے ساتھ ٹو کائنڈ ہو جاؤں گی تو وہ میری اس کو سمجھے گا کہ اس بندے کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میری ویکنیس ہوگی کہ اگر کوئی بندہ میرے ساتھ برا بیہیو کر رہا اور میں بہت اچھے سے اس کے ساتھ پھر بھی بیہیو کرتی رہوں, یا میں مطلب آگے سے جواب نہ دوں. یوزلی میں نہیں لڑتی خود سے کسی کے ساتھ نہیں لڑتی, لیکن اگر جب کوئی مجھے کہتا ہے نا کچھ تو پھر میں وہ ایک اس موڈ میں آ جاتی ہوں. تو یہ کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے, آپ تھوڑا اس کے بارے میں مجھے گائیڈ کریں گے؟
دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کبھی زندگی میں, یہ بڑا ہمارا سوشل لرننگ ہے, یہ ہماری اس میں آپ کا یہ بہت زیادہ قصور نہیں ہے. یعنی دس از واٹ وی ہیو لرنڈ ان اسکول, ان آور پیئرز. جو پرابلم ہے اس کو پہلے اس کی اصل میں سمجھ لیں کہ جب بھی کبھی آپ زندگی میں یہ فیصلہ کریں کہ میں نے ویسا کرنا ہے جیسا دوسرے نے کیا ہے تو ایک پرابلم ہے. پھر اصل میں میرا بیہیویئر میں کنٹرول نہیں کر رہا, دوسرا کر رہا ہے. میری ڈور دوسرے کے ہاتھ میں ہے, وہ مجھ سے اچھا کروانا چاہتا ہے تو اچھا کرے گا اور میں بھی اچھا کر دوں گا. میری زندگی پرنسپلز کے کنٹرول میں رہے. اگر کائنڈنیس آپ کی والدہ کا پرنسپل ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کائنڈنیس کے لیے اس سے قطع نظر کے دوسرا کیا ہے. میں نے کائنڈنیس شو کرنی ہے اللہ کے لیے. اور یہی تو وہ بات ہے کہ جو میں نے ابھی تھرو آؤٹ میں کہہ رہا تھا نا جی, جو گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں ٹو بیکم مور پرنسپل سینٹرڈ. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں سے ملوا دیں گے کہ جو بہت کائنڈ نہیں ہے, ان کے ساتھ ہماری کائنڈنیس زیادہ فلرش کرنی شروع کر دے گی اگر میں اپنے پرنسپل پر قائم رہوں. تو سب سے پہلی چیز آپ نے یہ فیصلہ کرنی ہے کہ زندگی کا کنٹرول, آپ کی زندگی کا کنٹرول وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہونا ہے یا آپ کے اصولوں کے ہاتھ میں ہونا ہے. اصول سے میری مراد وہ اصول ہیں جو کہ یونیورسل ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے اور ہم ان کو ویلیو کرتے ہیں. اگر وہ اصولوں کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر اصل میں میرا جو بیہیویئر, میرا جو رسپانس ہے वो सिचुएशंस के मामले में वो बहुत स्टेबल रहेगा, वरना आज उसने अच्छा किया तो मैं भी अच्छा करने में मजबूर हो जाऊंगा और आज बुरा किया तो मैं भी बुरा करने में मजबूर हो जाऊंगा। ये फैसला आपने जब कर लिया तो नेक्स्ट स्टेजेस जो आएंगी, जैसे जैसे आएंगी, इंशाल्लाह वी कैन टॉक अबाउट देम, वी कैन डिस्कस देम, हम ये देख सकते हैं कि किस तरह वो भी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन हम उन पर अगर चाहें तो अल्लाह ताला की तौफीक से उन पर कायम रह सकेंगे इंशाल्लाह। मैं मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो।
थैंक यू, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे आपसे पहले भी ऐसा किसी ने समझाया कि आपको तो अपने अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाहिए, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉन्टिन्यूसली कोई बंदा हमारे साथ बुरा बिहेव कर रहा है और फिर भी अगर हम उसके साथ अच्छे होते रहे, लाइक अगर हम बुरा सलूक ना भी करें लेकिन उसको एक मैसेज दें कि आपके इस बिहेवियर से हम हर्ट हो रहे हैं, फिर भी अगर वो इंसान नहीं ठीक हो रहा तो फिर अगर हम उसके साथ अपना ताल्लुक ख़त्म कर दें, उसके साथ बुरा बिहेव करने का ये मतलब नहीं है कि हम अगर किसी ने गाली दिया तो आप भी गाली शुरू कर दो। लाइक मैं ये सोचती हूँ कि फिर उस इंसान के साथ आपको अपना ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर लेना चाहिए। सो इसमें थिंक इसमें कोई बुराई है अगर एक बंदा कॉन्टिन्यूसली कोई इंसान आपको हर्ट कर ही जा रहा है और आपको ये साथ अच्छा उनका बिहेवियर नहीं है, मतलब अगर वैसा ही बिहेव करने का ये मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल वैसा ही होना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा अवॉइड करूँ अगर ऐसे इंसान को, तो
आप जरूर अवॉइड करने का हक रखती हैं जी, बिल्कुल अवॉइड करने का हक रखती हैं, व्हाई नॉट, ये तो आपका फैसला होगा। आप किस तरह से अवॉइड किया जाएगा, किस हद तक किया जाएगा, ये सारी चीजें आपने डिसाइड करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए अपने प्रिंसिपल पर खड़ा होना किसी के साथ अभी मुश्किल है तो आप अवॉइड करने का हक रखते हैं।
अच्छा वैसे अगर आप पर्सनली अपनी अगर खुद आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप काइंडनेस को ही प्रेफर करेंगे अपने प्रिंसिपल्स को या आप अवॉइड करना चाहेंगे?
देखिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू से। आइडियली स्पीकिंग मैं इसी को प्रेफर करूंगा जी कि मैं अपने प्रिंसिपल पे खड़ा रहूं और अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक दे कि मैं ऐसा कर पाऊं। लेकिन इंसान होने के नाते कई दफा गलती हो जाती है, भूल जाता हूँ। फिर वही जिस तरह की मिसाल मैंने आपके साथ शेयर की कि कई दफ़ा ये भूल जाता हूँ कि यहाँ पर मौका जो था वो अपने प्रिंसिपल्स का था, ये भूल जाता हूँ कि ज़िंदगी में मेरा जो इस वक्त असल में हकीकी जो एक्टिविटी हो रही है वो मेरा और खुदा का एक ताल्लुक बन रहा है। थ्रू वेरियस अप्स एंड डाउन इन माई लाइफ, थ्रू वेरियस रिस्पॉन्सेज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल पीपल अराउंड मी, यहाँ पर अल्लाह ताला के साथ मेरा एक मामला हो रहा है। वो जो हज़रत अबू बकर की मिसाल आती है ना जी तारीख में कि वो किसी से लड़ पड़े थे और कुछ झगड़ा हो गया था और उन्होंने कुछ बुरा भला कह दिया और वो चुप करके सुनते रहे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खड़े हुए मुस्कुराते रहे, और जब वो बोले और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो वो पैगंबर की मुस्कुराहट जो थे तबस्सुम ख़त्म हो गए। तो ये बड़ा सबक आमोज वाक्य है जी कि यानी मैं अल्लाह ताला को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। कीप दिस इन माइंड एट ऑल टाइम्स, यहाँ पर जो भी हो रहा है मामला वो मेरा दूसरों के साथ नहीं हो रहा, आई एम एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू गॉड, अल्लाह ताला को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दूँ।
ओके थैंक यू सो मच।
यू आर वेलकम जी। राइट जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अल्लाह ने चाहा तो इसी वक्त इसी जगह पे फिर मिलते हैं। आप सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला खैर वाफियत से रखे जी। अस्सलाम वालेकुम।